नमस्कार भारत, तारीख 2 मार्च, दिन शुक्रवार, मैं हूँ मानसी दास। दुनिया के किसी भी देश में पहुंच सकते हैं रूस के परमाणु मिसाइल, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा।
Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малый, средний, да какой угодно мощный.
क्या पीएम मोदी के विदेश दौरों से वाकई मजबूत हुए खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध?
जो इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की है स्पेशली दुबई और यूएई वगैरह में, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय एनी फॉरेन कंट्री।
और होली के अवसर पर पंचरंगी होली गीतों पर खास रिपोर्ट। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, पवन सिंह अतुल से। अमरीकी रक्षा विभाग ने कहा है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेजने वाले परमाणु हथियारों के होने के दावे से हैरान नहीं है। पुतिन ने अपने भाषण में कहा था कि रूस पानी के नीचे उड़ने वाले ड्रोन और दुनिया में कहीं भी मार कर सकने वाली क्रूज मिसाइल बना रहा है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता डाना वाइट ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि पूर्वी यूरोप में नेटो की बढ़ती तैनाती का ये रूसी जवाब है। प्रवक्ता ने कहा है कि अमरीका पूरी तरह से तैयार है और उसकी नीतियों में ताज़ा घोषणा से कोई बदलाव नहीं होंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो स्टील और अल्यूमिनियम पर मोटा आयात कर लगाने की योजना बना रहे हैं। इसके जवाब में चीन और मैक्सिको ने अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने की बात कही है। अमरीका को सबसे अधिक स्टील भेजने वाले कनाडा ने कहा है कि ट्रंप का फैसला अस्वीकार्य है। यूरोपीय संघ ने भी साफ किया है कि वो ऐसे किसी भी कदम को चुपचाप नहीं सहेगा, लेकिन ट्रंप ने कहा उनका मकसद अमरीकी स्टील और अल्यूमिनियम उद्योग का पुनर्निर्माण करना है। ट्रंप ने घोषणा की कि वो स्टील उत्पादों पर 25% और अल्यूमिनियम पर 10% आयात कर लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं।
People have no idea how badly our country has been treated by other countries, by people representing us that didn't have a clue.
लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दूसरे देशों ने अमरीका के साथ कैसा व्यवहार किया है। जो लोग हमारे हितों की का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हमारा स्टील और अल्यूमिनियम उद्योग तबाह हो गया है। अगर हम इसे दुरुस्त करेंगे तो हम आयात कर लगाएंगे तो नौकरियां और अधिक पैदा होंगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन के कैटलोनिया क्षेत्र के नेता कार्लेस पुचडिमोन ने कहा है कि वो कैटलोनिया का राष्ट्रपति पद जेल में बंद नेता जोर्डी सांचेज के लिए छोड़ रहे हैं। पुचडिमोन इस समय बेल्जियम में रह रहे हैं क्योंकि स्पेन का कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने कैटलन क्षेत्र की राजधानी बार्सिलोना लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुचडिमोन को कैटलोनिया की संसद ने राष्ट्रपति चुना था। अपना नाम वापस लेते हुए पुचडिमोन ने कहा,
D'altra banda, avui he informat al president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit.
मैंने कैटलोनिया की संसद के अध्यक्ष को बता दिया है कि वो नए उम्मीदवार के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दें, और ये भी कि संसद मेरी उम्मीदवारी को आगे न बढ़ाए। मैं राष्ट्रपति पद के लिए जोर्डी सांचेज का नाम प्रस्तावित करता हूँ। कैटलन नेता कार्लेस पुचडिमोन के शब्द। बांग्लादेश ने म्यांमार से कहा है कि वो सरहद के उस पार अपनी सेनाएं तुरंत वापस हटा ले जहां रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों के कैंप हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने म्यांमार में ढाका स्थित दूरादूत को बुलाकर अपना संदेश सुनाया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो सीमा पर म्यांमार की सेना के जमा होने से चिंतित हैं। बांग्लादेश के कैंपों में इस समय 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान शरण लिए हुए हैं। ये लोग पिछले साल अगस्त में म्यांमार की सैन्य कार्रवाई के बाद भागकर बांग्लादेश आ गए थे। वेनेजुएला ने अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव स्थगित कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अब चुनाव 15 मई के बाद होंगे। इससे पहले विपक्ष ने कहा था कि अगर चुनाव जल्दी हुए तो उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। देश के बाहर भी वेनेजुएला में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लातिन अमेरिका के कई देशों ने पहले ही चुनाव के नतीजों को ना मानने की बात कर दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। आज होली है। होली यानी वसंत ऋतु का आगमन, यानी प्रकृति में रंगों की छटा, जंगल में पलाश की और इन सब का स्वागत करने के लिए रंगों में सराबोर चेहरे। कार्यक्रम में सुनेंगे होली से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। आगे जानेंगे कि बैंकों से करोड़ों रुपयों का कर्ज लेकर ना चुकाने और उसके बाद देश छोड़कर चले जाने वालों की संपत्ति जब्त करने के संबंध में भारत सरकार ने जिस नए विधेयक को मंजूरी दी है वो वाकई में कितना कारगर साबित होगा। लेकिन पहले जानते हैं दुनिया की एक बड़ी खबर जो है रूस से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्होंने ऐसी परमाणु मिसाइलें तैयार कर ली हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सकती हैं और इन मिसाइलों को अमरीकी डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाएंगे। माना जा रहा है कि रूस का ये कदम अमरीका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने के जवाब में आया है। बीबीसी रिपोर्टरों के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए पवन सिंह अतुल से।
राष्ट्रपति पुतिन चौथी बार देश की सत्ता पर बने रहने के लिए होने वाले चुनाव से पहले कुछ बड़ी घोषणा करना चाहते थे। 17 दिन बाद के चुनाव पर नजर गड़ाए हुए पुतिन ने घोषणा की कि उनके पास ऐसे परमाणु हथियार हैं जो दुनिया में कहीं भी किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद सकते हैं और पश्चिम उनके इस ऐलान को लफाजी बिल्कुल न समझे। जब वो बोल रहे थे तो उनके पीछे एक बड़े से स्क्रीन पर अमरीकी राज्य फ्लोरिडा पर मिसाइलें बरसती दिखाई जा रही थी।
Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников, малый, средний, да какой угодно.
रूस और उसके सहयोगियों के विरुद्ध कोई भी छोटा या बड़ा परमाणु हमला रूस के ऊपर किया गया हमला माना जाएगा। इसका जवाब तुरंत और प्रत्याशित परिणामों वाला होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। ये कुछ कुछ शीत युद्ध वाली भाषा थी। इस भाषण पर अमरीका की प्रतिक्रिया आने में बिल्कुल देर नहीं लगी। व्हाइट हाउस ने तुरंत कहा कि वो राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा से बिल्कुल हैरान नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सैरा हकबी ने कहा कि अमरीका रूस के दावपेंचों से निपटने के लिए तैयार है।
Russia has been developing destabilizing weapons systems for over a decade in direct violations of its treaty obligations.
रूस कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करते हुए दशकों से अस्थिरता फैलाने वाले हथियार विकसित करता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप अमरीका और उसके सहयोगियों के लिए होने वाले खतरों को बखूबी समझते हैं। अमरीकी सैन्य क्षमता कभी भी किसी से कम नहीं होगी और ताज़ा रक्षा बजट के बाद तो हमारी फौज पहले से कहीं और अधिक मजबूत होगी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सैरा हकबी के शब्द। चुनावों से पहले आए इस भाषण में पुतिन ने रूस में गरीबी से लेकर तकनीक के क्षेत्र में कामयाबियों पर भी बात की, लेकिन अपने पास ताकतवर परमाणु हथियारों के होने के दावे ने दुनिया भर का ध्यान उनकी ओर खींचा है। उनके भाषण में दो संदेश थे। वो मानो बाहरी दुनिया से कह रहे हों कि वो उनसे ना उलझें। दूसरा संदेश मतदाताओं के लिए था कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी चाहिए तो उन्हें वोट दें।
रिपोर्ट सुना रहे थे पवन सिंह अतुल।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब और खाड़ी देशों का दौरा किया है और वहां के कई नेता भी भारत के दौरे पर आए हैं। कहा यह जा रहा है कि पीएम बनने के बाद से किए गए इन दौरों से पश्चिमी एशिया और अरब देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। माना जा रहा है कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का हालिया भारत दौरा इसी कड़ी का हिस्सा है। मगर रिश्तों में मजबूती आई है तो कितनी और इसके असल कारण क्या हैं? सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की ये रिपोर्ट।
कल धार्मिक कट्टरता पर हुए एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। दिल्ली के विज्ञान भवन में उन्हें सुनने एक खास मेहमान थे जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, जिनका कल भारत का 3 दिनों का दौरा खत्म हुआ। किंग अब्दुल्ला ने भी अपने भाषण में कुछ इसी तरह की बातें कहीं। उनके दौरे के खास मुद्दों में से एक विश्व स्तर पर जारी मजहबी कट्टरता के खिलाफ भारत के साथ संयुक्त मोर्चा बनाने पर जोर देना शामिल था। दरअसल पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों के दौरे में कट्टरता के खिलाफ महाज बनाने की अपील की है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की पश्चिम एशिया की विशेषज्ञ मीना सिंह रॉय कहती हैं कि प्रधानमंत्री की पश्चिम एशिया पॉलिसी का ये एक अटूट हिस्सा बन गया है।
मैं ये कहूंगी कि संबंधों में जो है वो बेहतरी तो आई है,
और जो मैंने ये कहा कि आप जो है तवज्जो सिर्फ एनर्जी पे ही नहीं है बल्कि उसके बियॉन्ड है। आप देखें
भारत के इसराइल के साथ बेहतर रिश्ते के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अरब और खाड़ी देशों के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा के अनुसार इसके कई कारण हैं।
पहली बात तो ये है कि हम इस रीजन के लिए अपने दिमाग में डिफेंसिव रहे हैं कि भाई वहाँ पे इंडियन से रेमिटेंस आती है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कदम दूसरी दिशा में चले जाए हमारे या रिलेशनशिप के। जबकि हमने ये कभी नहीं सोचा कि अगर 3.5 मिलियन या 4 मिलियन जितने भी इंडियंस हैं गल्फ कंट्रीज में, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है एज रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट्स इन दोज कंट्रीज डेवलपमेंट। दूसरा, जो इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की है स्पेशली दुबई और यूएई वगैरह में, कुवैत में, वो भी रिमार्केबल है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय एनी फॉरेन कंट्री इन दोज कंट्रीज और दैट रीजन। ये टू वे रिलेशनशिप है जो स्ट्रेंथन हो रही है पीपल टू पीपल लेवल।
इसके नतीजे में आज पाकिस्तान का पुराना दोस्त सऊदी अरब भारत से अधिक नजदीक आ चुका है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा दोस्त जॉर्डन है, लेकिन किंग अब्दुल्ला के दौरे से भारत और जॉर्डन के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। मगर सवाल यह है कि एक छोटे से देश जॉर्डन से भारत का क्या फायदा होगा? मीना सिंह रॉय कहती हैं कि जॉर्डन को पश्चिम एशिया से अलग थलग करके नहीं देख सकते।
पहली चीज है कि जॉर्डन की अपनी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर हम देखेंगे कि ये कस्टोडियन है जो मॉस्क है जेरूसलम में, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया इनसे फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है जो कि मतलब ट्रेड के हिसाब से बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और तीसरी चीज ये है कि हमें जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ओवरऑल पॉलिसी टुवर्ड्स वेस्ट एशिया है जो काफ़ी बदल रही है पिछले 3 साल में, हमारा फोकस इस पे रहा है, तो इसराइल पैलेस्टीनियन इशू जो है वो डिहाइफनेट हो गया है अब। तो अगर हम इंडिया का कोई रोल देखना चाहते हैं, चाहे तो हम काउंटर रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं और पैलेस्टीनियन इशू भी अगर हम देख रहे हैं, तो आप देखिए काफी पैलेस्टीनियंस इस समय जॉर्डन में रहते हैं, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते।
भारत की पश्चिम एशिया में बढ़ती लोकप्रियता की उसकी विदेश पॉलिसी में झलक होनी चाहिए, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। मीना सिंह रॉय के अनुसार इस पॉलिसी की बड़ी सफलता के लिए पहले छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। विशेषज्ञ इस बात पर राजी हैं कि अरब और खाड़ी देशों में भारत की अहमियत पिछले कुछ सालों में बढ़ी है और भारत की लोकप्रियता भी। राजीव डोगरा कहते हैं कि भारत के इन देशों के साथ रिश्ते पहले से ही अच्छे थे, जिसे स्थापित किया था जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन वो ये स्वीकार करते हैं कि भारत और अरब देशों की दोस्ती एक नई करवट ले चुकी है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आने और उनके देश छोड़ने के बाद भारत सरकार आर्थिक अपराधों के मामले में सख्त हुई है। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने और उसकी कुर्की करने के लिए सरकार को एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने फ्यूचिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी दी है। सुनिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा।
2017-18 के बजट में एक बजट अनाउंसमेंट था कि जो फ्यूजिटिव्स होंगे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स में, उनकी संपत्ति को कॉन्फिसिकेट करने के लिए सरकार एक कानून लाएगी। पिछले कई महीनों से इसका ड्राफ्ट बन रहा था, एक्सटेंसिव इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन थी और आज मंत्रिपरिषद ने इसको अप्रूव किया है। इस बिल के साथ एक शेड्यूल्ड ऑफेंसेस होंगे और अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस किसी के खिलाफ है और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट का अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ है, उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए वो देश से बाहर चला जाता है, तो कोर्ट कैन डिक्लेयर हिम एज अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर। फ्यूजिटिव ऑफेंडर डिक्लेयर होने के कई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इट विल लीड टू कॉन्फिसिकेशन ऑफ ऑल हिज एसेट्स इन इंडिया, और इन एसेट्स में अगर उसके कोई बेनामी एसेट्स भी होंगे तो वो भी इसके अंदर तहत शामिल किए जाएंगे। इसमें एक और प्रावधान डाला है, विदेशों में भी जो एसेट्स होंगे उनको भी कॉन्फिसिकेट करने का अधिकार होगा।
ये नया विधेयक क्या है और इसके कानून बन जाने से क्या बदलाव आएगा? हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक MK वेणु से यही सवाल पूछा।
देखिए ऐसे तो कई प्रावधान हैं, अभी भी अगर कोई फ्रॉड करता है बैंकों के साथ तो उनके एसेट्स को सीज कर सकते हैं अभी भी, मगर जाहिर है कि अभी जो प्रोसीजर्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, जो भी है थोड़े से प्रोसीजर्स हैं जो कई बारी बाधा पहुंचाती हैं कि भी एकदम से अगर करना हो तो। ये नीरव मोदी वगैरह, ये मेहुल चौकसी, ये मामला है, सब बैंकों से पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि सरकार कुछ दिखाना चाहती है, एकदम से कुछ कोई लेजिस्लेशन लाए जो एक किस्म से डिटेरेंट के तौर पे लोग देखें। तो आज जो वित्त मंत्री ने बोला कि अगर कोई भागने की सोच रहा है कोई बैंक से पैसा लेके, तो उसको ये अभी सोचना पड़ेगा कि उसके सारे एसेट्स सरकार यहाँ पे टेम्पररीली सीज करके फिर उसके बाद ये फ्यूजिटिव एक्ट जो नया है उसके तहत प्रोसीडिंग्स होंगी, और 100 करोड़ मिनिमम, 100 करोड़ से ऊपर वाले जो फ्रॉड्स का, ताकि बड़े जो फ्रॉड करते हैं उनको पकड़ा जाए इस तरह। और दूसरा इसमें एक और प्रावधान है कि जो बाहर वाले देश हैं वहां पे जो एसेट्स होगी उस पे भी सरकार अपना ज्यूरिसडिक्शन लाने की कोशिश करेगी, मगर उसके लिए जो दूसरी फॉरेन जो कंट्री है वहां की सरकारों की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे होगा मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि और जो कंट्री है वहां अपने लॉज चलते हैं। तो अगर जैसे विजय माल्या के मामले में उनके अभी एसेट्स बाहर हैं, तो अगर ऐसा मामला हुआ और नीरव मोदी ऐसा मामला हुआ, अगर हिंदुस्तान की सरकार नए लॉ के तहत अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाके बोलने की भी ये हमारे पैसे लेके भागा है तो हम यहाँ जो इसके एसेट्स हैं इस पे हम अपना कब्जा करना चाहें, तो वो किस तरह देखेंगे वो अभी तक क्लियर नहीं है।
अगर संसद से ये कानून पास हो जाता है दोनों सदनों से, तो मिसाल के तौर पे इसे देखा जा सकता है?
देखिए ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी लॉ तो है, मगर इसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसका मिसयूज भी हो सकता है, अगर ये मान के भी चलेंगे लॉ की जरूरत है। मगर ये स्थिति क्यों आई है, ये मेन बात, ऐसी स्थिति आई इसलिए क्योंकि हमने जो हमारे जो एग्जिस्टिंग जो लॉज है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर उसको हमने ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया। जिस तरह विजय माल्या और इन सबको बाहर जाने दिया जबकि वार्निंग्स पहले थी, ऑडिटर्स की वार्निंग्स थी, मगर ये हमारी जो खामियां जो है उसको कवर करने के लिए एक और लेजिस्लेशन लॉ लाया जा रहा है। तो अब आगे से अगर ठीक है, अगर जेटली साहब कहते हैं वित्त मंत्री की ये एक तरह से आगे जाके डिटेरेंट प्रूव करेगा कि भाई कोई अगर भागना चाहता हो तो वो 10 बारी सोचेगा कि भाई मेरे हिंदुस्तान की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, मगर अब ऐसा भी हो सकता है कि आगे से जो भागना चाहता हो वो धीरे धीरे हिंदुस्तान से अपनी संपत्ति बाहर भी कर सकता है।
वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक MK वेणु से बात कर रहे थे मोहम्मद शाहिद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में लड़कियों के एक छात्रावास में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 7 साल की एक बच्ची के साथ वहीं रहने वाली कुछ नाबालिग छात्राओं ने मारपीट की है और कथित रूप से बच्ची के शरीर के भीतर डंडा डाल दिया। इसके कारण बच्ची के गुप्तांग में संक्रमण हो गया। फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले के गौरेला इलाके में 8वीं तक की बच्चियों का एक छात्रावास राज्य का आदिम जाति कल्याण विभाग चलाता है। पहली से 8वीं तक की बच्चियां इस छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती हैं। आरोप है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 7 साल की एक लड़की की गलती से 7वीं-8वीं में पढ़ने वाली छात्राओं के कुछ धुले हुए कपड़े गिर गए थे। इससे लड़कियां नाराज हो गईं और उन्होंने तीसरी कक्षा की लड़की को मारा पीटा और उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया। पीड़ित बच्ची की मां का कहना है कि जब वे होली की छुट्टी में अपनी बेटी को घर लेकर आईं तो उन्होंने पाया कि बच्ची कराह रही है और उसे चलने में भी तकलीफ है। इसके बाद बच्ची ने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। पीड़ित बच्ची की माँ के अनुसार
मैडम है वहाँ का, गार्ड है वहाँ का, सब कोई वहीं रहे, मौजूद रहे, लड़की बगल में पढ़ती रही। उसके बाद में लड़की रात में खाना उना खिलाने के बाद में उस लड़की को मतलब रात में लाइट बंद करने के बाद उसके कपड़ा खोले, मारने के बाद में उसका कपड़ा खोल, चड्डी खोल कर उसमें डंडा डाल दी उसके शरीर के अंदर।
हालांकि छात्रावास अधीक्षक पुष्पा धृतलहरे का कहना है उन्हें इस तरह की किसी घटना की जानकारी नहीं है।
कुछ नहीं हुआ है सर, अच्छे लोग अच्छे से रहते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है किसी के साथ। उनके घर वाले बोल रहे हैं कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है करके। मैं 23 तारीख को आश्रम में ही थी, 24 तारीख को मैं मीटिंग में गई उत्कल ट्रेन।
पुलिस ने चिकित्सक की रिपोर्ट और पीड़ित बच्ची की शिकायत के आधार पर छात्रावास की 3 बच्चियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 323 व लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह ने कहा
जो बच्ची है 7 साल की बच्ची है उसने बताया अपने मदर को कि उन्हीं के हॉस्टल में जो रहने वाली कुछ बच्चियां हैं, अन्य बच्चियों के द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया करके आरोपी बच्चियां हैं वो भी नाबालिग हैं। प्रथम दृष्टया जो बातें सामने हैं उसके आधार पर 377 और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस की जांच चल रही है और अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। आरोपी नाबालिग बच्चियों से भी पूछताछ हो रही है, लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि हिंसा के ऐसे तौर तरीके किन परिस्थितियों में बच्चों को अपनी लपेट में ले रहे हैं और आखिर बच्चों को इससे कैसे बचाया जा सकता है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
कई लोग ये मानते हैं कि आर्थिक स्थिति बेहतर होने और विदेश जाने से महिलाओं की स्थिति में बदलाव आता है, लेकिन भारत छोड़कर विदेश में बसने का मतलब ये नहीं कि लोग अचानक सामाजिक ताने बाने से ऊपर उठकर सोचने लगें। पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने वाले भारतीयों की संख्या काफी बढ़ी है। साथ ही भारतीयों द्वारा घरेलू हिंसा करने और पत्नी को जलाकर मारने जैसी घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। सुनिए मेलबर्न से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की ये रिपोर्ट।
मिलिए नेहा से। 1.5 साल पहले शादी करके गुजरात से ब्रिस्बेन आई नेहा, उनका असली नाम नहीं है। एनआरआई पति से उनकी मुलाकात इंटरनेट के जरिए हुई थी। नेहा की ये दूसरी शादी थी। पहले पति की मारपीट से तंग आकर वो अलग हो गई थीं। परदेश के अकेलेपन में दूसरे पति का सुलूक और भी बुरा रहा।
मतलब वो मुझे
ऐसे डराता था कि तू मुझसे डर के रह, तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। उसके हाथ में जो चीज आती थी वो उसी से मुझे मारता था। मेरे गले में स्क्रैच मार्क लग जाते थे। वो गले को ऐसे दबोचता था कि ऐसा लगता था मेरी सांस घुट रही है।
आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा के कारण हर हफ्ते एक महिला की हत्या कर दी जाती है। यहाँ 5 से 6 लाख भारतीय रहते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार प्रवासियों में भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।
ऑस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा से जुड़े कड़े कानून हैं। हेल्पलाइन पर महिलाएं फोन कर सकती हैं और पुलिस तुरंत मदद करती है, लेकिन कई महिलाओं को अपने अधिकारों का पता नहीं होता, जिसके कारण उनके पति उन्हें वापस भारत भेज देने की धमकी देते हैं।
मनप्रीत सिंह कौर ने भारतीय समाज में घरेलू हिंसा पर द एनिमी विदिन नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई है।
2012 में मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो इंडियन कम्युनिटी है वो बिल्कुल हिल गई थी, क्योंकि बस 3 महीनों के गैप में हमने लगातार सुना कि कोई ना कोई डेथ हो रही है और हर एक के पीछे घरेलू हिंसा का हाथ था। सबसे शायद डरावना केस था एक सरगुन रागी को अपने घर में जिंदा जलाया गया। ऐसे ऐसे केसेस लगातार होते रहे।
ऐसी ही दुख भरी कहानी लीना की भी है। लीना के पति चाहते थे वो पटियाला में उनके माँ बाप की सेवा करें, लेकिन एक बेटे की माँ लीना नहीं मानी। लीना उनका बदला हुआ नाम है।
उसने मुझे पंच किया मेरे स्टमक में और मुझे थप्पड़ मारा। 7 वीक्स प्रेगनेंसी थी मुझे, तो आफ्टरवर्ड्स मैंने उसको थप्पड़ मारा तो उसने कॉन्टिन्यूसली मुझे इतने ज़्यादा थप्पड़ मारे कि उसका फ्रेंड आया मुझे बचाने के लिए। तो जब उसका फ्रेंड उसको बाहर ले गया तो मैंने फटाफट से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर उसने दरवाज़ा भी तोड़ दिया और फिर वो अंदर रूम में घुस आया और कहने लगा कि मैं तुझे मार दूंगा, मार दूंगा।
घरेलू हिंसा के कारण लीना ने अपना दूसरा बच्चा खो दिया। कई महिलाओं के लिए अंग्रेजी न जानना, परिवार से दूरी और कानून से नावाकिफी सबसे बड़ी चुनौती होती है। सामाजिक कार्यकर्ता जतिंदर कौर बताती हैं।
एक मामले में हमने पाया कि एक औरत को उसके पति ने 18 महीने तक घर में बंद करके रखा। उसे अंग्रेजी का एक शब्द नहीं आता था। वो कहीं बाहर किसी दुकान में भी नहीं जा पाती थी। हमने पुलिस के साथ मिलकर उसे छुड़ाया। कई महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता।
गुजरात से आई नेहा का अब अपने दूसरे पति से तलाक हो चुका है। उन्होंने रिश्तेदारों को दूसरे तलाक के बारे में नहीं बताया है। कानूनी कदम नहीं उठाने के कारण उनके पति के खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ा। दूसरे मामले में पटियाला की लीना ऑस्ट्रेलिया सरकार की मदद से अपने बच्चे के साथ मेलबर्न में रह रही हैं। विनीत खरे, बीबीसी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया।
और कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले सुनते हैं क्या छपा है आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में। पवन सिंह अतुल अखबारों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं। बताइए पवन जी, क्या है आज की सुर्खियां?
मानसी, आज सभी अखबारों का पहला पन्ना जो है होली के रंगों से एकदम भरा पड़ा है, सराबोर है। दफ्तरों, स्कूल, कॉलेज, सड़कों पर होली खेलते हुए लोगों की तस्वीरें आज प्रमुखता से छपी हैं। अमर उजाला ने पहले सफ़े पर BSF के जवानों की तस्वीर छापी है जो सीमा रेखा पर, सरहद पर होली खेल रहे हैं। इसके अलावा अमर उजाला ने पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को भी जगह दी है जिसमें उन्होंने गुरुवार को कहा था कि आतंकवाद पर कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं कार्रवाई नहीं मानी जानी चाहिए। वो शाह जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला भारत आए थे, उनसे जुड़ा एक समारोह था, वहाँ पर बोल रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ मंत्रियों और नौकरशाहों से कहा है कि वो चीन के साथ रिश्ते काफ़ी नाजुक दौर में पहुँच गए हैं, इसलिए दलाई लामा के कार्यक्रमों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अखबार के अनुसार विदेश सचिव विजय गोखले ने इससे जुड़ा एक नोट भी जारी किया है। तो गौरतलब है चीन दलाई लामा को खतरनाक प्रतीकतावादी मानता है और भारत उनसे दूरी बनाएगा ताकि चीन से रिश्ते थोड़े बेहतर हों। सभी अखबारों में कल भगौड़ा आर्थिक विधेयक अपराध विधेयक जो था उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई, वो खबर प्रमुखता से छापी है। लेकिन आज का सबसे मज़ेदार फ्रंट पेज और नवभारत टाइम्स का है जिसमें बुरा न मानो होली की तर्ज पर व्यंगात्मक हेडलाइंस दी हैं जो काफ़ी मज़ेदार हैं। जाहिर है ये सब मजाक है लेकिन काफ़ी मज़ेदार।
धन्यवाद पवन जी। आज होली के मौके पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक खास रिपोर्ट जो है झारखंड से। यहाँ होली के गीतों को लेकर कई दिलचस्प प्रयोग होते रहे हैं। होली गीत में 5 रागों का समावेश होता है जिसे पंचरंगी कहते हैं। वक्त के साथ साथ अब इस मौके पर रीमिक्स गीत बजने लगे हैं, लेकिन आदिवासियों के इन पारंपरिक गीतों की बात कुछ और ही है। सुनिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
यह आवाज़ सारंगी की है जिसे हरी मुंडा बजा रहे थे। उन्होंने अपनी सारंगी खुद बनाई है। इसे कटहल की लकड़ियों से बनाया गया है और इसके तार घोड़े की पूंछ से बने हैं। झारखंड के तमाम वाद्य यंत्र यहाँ के आदिवासी खुद ही बनाते हैं, लिहाजा इसका संगीत अलहदा होता है। गीतों की रचना भी आदिवासियों ने खुद ही की है। झारखंड के चर्चित लोक कलाकार पद्मश्री मुकुंद नायक बताते हैं कि जनजातीय समाज में गीतों की रचना सैकड़ों साल पहले से की जाती रही है। इन गीतों को गुनगुनाते वक्त कई दफ़ा हमें पता भी नहीं होता कि इसे किसने और कब लिखा था, फिर भी ये गीत लोगों की जुबान पर हैं। पद्मश्री मुकुंद नायक ने ऐसा ही ये गीत BBC के लिए गाया। झारखंड के जंगलों में पलाश के फूल खिल चुके हैं, मानो जंगल में आग लग गई हो। उसकी ठूंठ वैसी ही काली है जैसे दीपक तले अंधेरा। जाने माने साहित्यकार और रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा विभाग के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरधारी राम गौजू कहते हैं कि फागुन में गाया जाने वाला पंचरंगी फागुन गीत झारखंड की विशेषता है।
फगुआ जब आता है तो प्रकृति निमंत्रण बांटती है। माघ के महीना आते ही पूरे जंगल की हरियाली पीले रंग में रंग जाती है और वो पीले पत्ते गिर जाते हैं और वायु दूत बवंडर बनकर उस पीले पत्तों को झारखंड के कोने कोने में पहुंचाती है।
आदिवासी फागुन गीतों के पात्र भी वही हैं जिनका जिक्र भारत के दूसरे राज्यों के गीतों में होता है। मसलन इस गीत में राधा अपने प्रीतम की बात जो रही है, कहती है कि फागुन आ गया है, न जाने कृष्ण कब आएंगे। पद्मश्री मुकुंद नायक ने इस गीत में भी पंचरंगी लय का प्रयोग किया है जो अनूठा है।
तब देखिए दूसरा राग आ रहा है
जी।
भादो को बूंद प्रबल जो गिरी चढ़ी जब बोलता मोर सुनी के जीव डरे।
हालांकि बदलते जमाने में रिमिक्स गाने भी बजने लगे हैं। नागपुरी का यह गीत इन दिनों लोगों की जुबान पर है। झारखंड के जाने माने स्कॉलर रामदयाल मुंडा कहते थे कि नाची से बाची, मतलब जो नाचेगा वही बचेगा। आदिवासी समाज ने उनके इस नारे को सूत्र वाक्य मान लिया है। होली के मौके पर रांची समेत पूरे राज्य में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये इनके खुश होने का मौका है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
कार्यक्रम में अब हमारे पास समाचारों का वक्त नहीं बचा है। स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया अभिजीत श्रीवास्तव ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ हैं हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। मानसी दास को सभी साथियों समेत दीजिए अनुमति। नमस्कार।